स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम की पुस्तक में से मरकुस रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको लाभ मिल रहा है। इसमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसकी सेवकाई के विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों।
प्रिय मित्र, आप सबको प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मेरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आज भी आप परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए और उसे फंसाने के लिए फरीसी और सदूकी उसके पीछे थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उनके हर एक प्रश्नों का जवाब उन्हीं के प्रश्नों में से दिया। और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का भी हमें बताया कि किस प्रकार परमेश्वर हमें देखते हैं जब हम दान देते हैं, अर्थात हमारे मन की इच्छाओं को देखते हैं कि हम किस मनसा के साथ दान देते हैं। आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 13 से आरंभ करेंगे, और इस अध्ययन में भी हमें आश्चर्य कर्म देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे ताकि हम इस वचन को अच्छी रीति से समझ सके। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से एक बार आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दे, ताकि जब हम आपके वचन को सुने तो यह हमारे हृदयों से बातचीत करने पाए, हमारे हृदयों में कार्य करने पाए। प्रेम पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन श्रोता भाई बहनों के लिए जो किसी न किसी रूप से दुखी हैं, निराश हैं, चिंता में हैं, परेशानी में हैं या किसी प्रकार की बीमारी में हैं। पिता परमेश्वर, आप उन पर अनुग्रह प्रदान करें ताकि वे भी स्वस्थ और भले चंगे होकर आपके इस जीवित वचन को आदर दे सकें और इसके अनुसार अपने जीवन को ढाल सकें। इस समय हम इसे प्रत्येक को आपके हाथ में सौंप देते हैं और आपकी सहायता मांगते हैं कि आप हमें अपने नियंत्रण में रखें और अपने वचन से हम सबको आशीषित करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना आपके बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, इस अध्याय में भी आश्चर्य कर्म नहीं है, परंतु गतिविधियों की कमी नहीं है। ये गतिविधियां भविष्य से संबंधित हैं। भावी महाक्लेश की विनाशकारी घटनाएं और मसीह का पुनः आगमन का बड़ा ही सजीव चित्रण है। यह गतिविधि ईश्वरीय सामर्थ्य की है और अनुशक्ति से अधिक सामर्थी है। मेरे मित्रों, जैतून के पर्वत का दृश्य भी मरकुस मती के वृतांत की तुलना में संक्षिप्त है। यह तो मरकुस की लेखन शैली का गुण है। वह प्रत्येक घटना को अतिशीघ्रता से घटित होता हुआ दर्शाता है, परंतु कुछ घटनाओं का निसंदेह उसने विस्तृत वर्णन भी किया है। यह मैं अपनी रूपरेखा आपको दे रहा हूं। पहला है जैतून पर्वत पर शिष्यों द्वारा प्रश्न, जिसे हम 13 अध्याय उसके 1-4 पद में पाते हैं, और दूसरा इस युग की झांकी, जिसे पद 5-7 में पाते हैं, तीसरा महाक्लेश में सताओ, पद 8-13 में पाते हैं, और चौथा महाक्लेश की भविष्यवाणी, पद 14-23 में, पांचवा मसीह के आगमन की घोषणा, पद 24-27 में, छठवां अंजीर के वृक्ष का दृष्टांत, पद 28-33 में, सातवां परमेश्वर के लोगों की गतिविधियां, पद 34-37 पद में हम पाते हैं। मित्रों, आइए अब हम पढ़ें मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 1 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन हैं। मित्रों, यह एक उदाहरण है कि धर्मशास्त्र के पद से कैसे गलत फहमियां हो सकती हैं। स्वाभाविक है कि कोई पूछे इसका अर्थ क्या है। शिष्यों ने यह क्यों कहा, हमें बताया नहीं गया है। यह समझने के लिए हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय और उसके 38 पद को देखना होगा। यीशु ने मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी की थी, जिसे सुनकर शिष्य उलझन में पड़ गए थे, क्योंकि वह रचना भव्य थी और उसकी महिमा बेजोड़ थी। वे इस कारण सुनिश्चित करना चाहते थे कि यीशु ने उस महिमा को देखा, अतः उन्होंने कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। तब हम मार्कुस 13 उसके 2 पद में आगे पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। इस बात पर यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम यह बड़े बड़े भवन देखते हो? आज के विकास को देखते हुए हम भी यह प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या आप ये बड़े बड़े भवन देखते हैं? यदि तीव्र भूकंप आ जाए तो क्या होगा? पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा। निसंदेह वे सीमेंट और ईंटों तथा लोहों की रॉड से बनी है, परंतु उनकी अल्पकालीन स्थिति निश्चित ही है। यीशु यहाँ एक महान आत्मिक सबक सिखा रहे हैं। पौलुस ने इस आत्मिक सत्य को इस प्रकार व्यक्त किया है, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। दूसरे कुरिन्थियों के पत्र 4 अध्याय उसके 18 पद में हम इसे पढ़ते हैं। मेरे मित्रों, यह एक महान सत्य है। नबूकदनेस्सर अपने अनुपम साम्राज्य में टहल रहा था और उसने अपने मन में कहा, क्या यह विशाल बाबुल मैंने नहीं बनाया? आज वहां घमंड का कारण ही दिखाई नहीं देता, सब कुछ खंडहर बन गया है। मेरे मित्रों, क्या आप अनदेखी वस्तुएं देख सकते हैं? मार्कुस 13 उसके 3 और 4 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यहोना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा कि हमें बताए कि ये बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। मित्रों, मार्कुस सदा ही ऐसी बातें यदा कदा लिखता है जो अन्य सुसमाचारों में नहीं मिलती है। यदि मार्कुस नहीं लिखता तो हमें पता ही नहीं चलता कि यीशु को प्रश्नों द्वारा फंसाने के लिए 4 प्रतिनिधियों का मंडल नियुक्त किया गया था। ध्यान रखें कि मार्कुस का सुसमाचार वास्तव में पत्रस का सुसमाचार है। मार्कुस के वृतांत में उन्होंने 2 प्रश्न पूछे, परंतु मत्ती के वृतांत में उन्होंने यीशु से 3 प्रश्न पूछे। शिष्यों ने वास्तव में 3 प्रश्न पूछे। लुका इसे स्पष्ट करता है। पहला, हे गुरु, यह सब कब होगा? और दूसरा प्रश्न, तेरे आने का क्या चिन्ह होगा? और तीसरा प्रश्न था, जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? मत्ती और मार्कुस अंतिम 2 प्रश्नों का उत्तर यीशु के मुख से लिपिबद्ध करते हैं, यद्यपि मत्ती अधिक विस्तार से लिखता है। हम मार्कुस के बल पर ध्यान दें। ध्यान रखें कि मार्कुस ने रोमियों के लिए सुसमाचार लिखा था, अतः उसमें सामर्थ्य प्रदर्शन, प्रयोगात्मक पूर्ण और दृश्य प्रधानता है। हम मार्कुस 13 उसके 5 और 6 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूं और बहुतों को भरमाएंगे। मित्रों, यह झूठे मसीह की सतत चेतावनी है। कुछ लोगों का मानना है कि आज इसका कोई खतरा नहीं है। आज स्वतंत्र थियोलॉजी या धर्म विज्ञान के प्रचारक क्या हैं? वे झूठे मसीही विरोधी हैं। सुनकर आप सोचेंगे कि वे बाइबल आधारित शिक्षा दे रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। उनके अनुसार मसीह कुंवारी मरियम से उत्पन्न नहीं हुआ था। उसने कोई आश्चर्य कर्म नहीं किए। उसने संसार के पापों के लिए अपना लहू नहीं बहाया। वह सदैव पुनर्जीवित नहीं हुआ। उसका स्वर्गरोहण नहीं हुआ और न ही वह फिर आएगा। परंतु बाइबल तो इन तथ्यों की पुष्टि करती है। अतः जिस मसीह का वे प्रचार करते हैं वह कोई अन्य मनुष्य है, मसीह विरोधी वह है। यूहन्ना का वचन सुनिए कि क्या कहता है, हे लड़को, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीही विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इसे आप पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 18 पद में पाते हैं। मित्रों, आज अनेक मसीह विरोधी हैं जो प्रभु यीशु से बड़े बड़े काम दिखाने का दावा करते हैं। हमारे प्रभु ने तो हमें पहले ही सतर्क कर दिया था। मरकुस 13 उसके 7 पद में लिखा हुआ है, और जब तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो न घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है परंतु उस समय अंत ना होगा। इसी प्रकार दूसरा चिन्ह होगा युद्ध, परंतु यह युग के अंत के चिन्ह नहीं है। ये मसीह विरोधी या ख्रिस्त विरोधी नहीं होंगे, वे ख्रिस्त विरोधी के आगमन के संकेत होंगे। तब हम मरकुस 13 उसके 8 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा, और हर कहीं भूइडोल होंगे और अकाल पड़ेंगे, और यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। आज मनुष्य सोचता है कि वह अपनी विकसित सभ्यता के साधनों द्वारा संसार को अति उत्तम बना रहा है, तब अचानक ही उसे बोध होता है कि वह पृथ्वी को दूषित कर रहा है, जिसमें रहना दुभर हो जाएगा। अधिक समय नहीं होगा कि जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि मनुष्य भूख से मरने लगेगा। बाइबल में स्पष्ट है कि कष्टों के साथ अकाल भी होगा। मनुष्य बाइबल को तुच्छ समझता है, परंतु इसकी सत्यता को देखिए कि कुछ वर्ष पूर्व मनुष्य सोच रहा था कि साइंस विज्ञान समस्याओं का समाधान खोज निकालेगा, परंतु अब देख रहे हैं कि विज्ञान ने ऐसी समस्या खड़ी कर दी है जिसका समाधान न तो विज्ञान के पास है और न ही संसार के पास। बर्नार्ड शॉ ने कहा, जिस विज्ञान पर मैंने विश्वास किया वह निष्फल रहा, और आप एक ऐसे नास्तिक को देख रहे हैं जो विश्वास से हट गया, कैसे दुख की बात है। मित्रों, मैं क्या कहूं, ये युग के अंत का संकेत है। मरकुस 13 उसके 9 और 10 पद में लिखा हुआ है, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे, और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। यहां वह कलीसिया के विषय में नहीं कह रहा है, सुसमाचार से उसका आशय है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। यह अनुग्रह का सुसमाचार है। मुक्ति परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा प्राप्त होती है। परमेश्वर के पास मुक्ति अर्थात उद्धार का एक ही साधन है, मसीह यीशु का लहू। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। दूसरे शब्दों में, जब वे ऐसा कहेंगे तब वह समय महाक्लेश का समय होगा। इसमें कोई चूक वाली बात नहीं है। मरकुस 13 उसके 11 पद में हम पढ़ते हैं, जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं परंतु पवित्र आत्मा है। अब कोई आलसी प्रचारक अपना उपदेश तैयार करने के लिए इसका बहाना न बनाए। मेरे एक प्रचारक मित्र ने उसके साथ घटी एक घटना सुनाई। वह प्रचार करने जा रहा था और उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 2 गाड़ियां बदलनी होती थी। वह स्टेशन पर अपना उपदेश दोहरा रहा था कि एक व्यक्ति ने आकर उससे पूछा, क्या आप प्रचारक हैं? उसने कहा, जी हाँ। आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा, मैं अपने उपदेश की रूपरेखा पढ़ रहा हूँ। अच्छा, आप अपना उपदेश तैयार करके ले जाते हैं? निस्संदेह। क्या आप तैयारी नहीं करते? जी नहीं, मैं मंच पर चढ़ जाता हूं और आत्मा मुझे संदेश देता है। यदि आत्मा आपको सही समझ या संदेश ना दे तो आप क्या करते हैं? तो उसने कहा, ओह, मैं यहां वहां की बातें करना आरंभ कर देता हूं जब तक कि आत्मा मुझे संदेश ना दे। मित्रों, आज ऐसी अनर्थ बातों की बहुतायत है। इस पद का अभिप्राय यह नहीं है, यह उस समय के बारे में है जब आप 144,000 इसराइली साक्षी देंगे। यह आपके और मेरे लिए नहीं है कि हम अपना संदेश या संडे स्कूल का पाठ तैयार ना करें और हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें कि आत्मा अगुवाई करे। मरकुस 13 उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, और भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे, और लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। अधम धोखा है। आगे है 13 के 13 पद में पढ़ते हैं, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मित्रों, उस समय विश्वव्यापी यहूदी विरोधी होगा, परंतु परमेश्वर उन पर अपनी मुहर लगाएगा और वे सुरक्षित रहेंगे। अब आगे आता है एक अति सजीव भाग, मरकुस 13 उसका 14 पद लिखा है, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। मित्रों, महाक्लेश का आरंभ पहले 3.5 वर्ष शांति से रहेंगे, जो ख्रिस्त विरोधी का छल होगा। तभी उजाड़ने वाली घृणित वस्तु का आगमन होगा, जैसा कि हमें दानियल की पुस्तक में बताया गया है। दानियल के शब्दों में यह कहा गया है। और यहां पर देखिए, मार्कुस मंदिर शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि रोमी पूछेंगे कि वह कहां है। मंदिर के पवित्र स्थान के बारे में केवल यहूदी ही जानते थे, आराधनालयों में वह स्थान नहीं है। मित्रों, हम आगे पढ़ते हैं मार्कुस 13 उसके 15 और 16 पद में, जहां पर लिखा है, जो कोठे पर हो वह अपने घर से कुछ लेने के लिए नीचे न उतरे न भीतर जाए, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे न लौटे। ध्यान दीजिए कि स्थिति ऐसी आपातकालीन होगी कि उन्हें घर में भी प्रवेश नहीं करना है, बस भाग खड़े हो जाना है। मार्कुस 13 उसके 17 और 18 पद में हम आगे पढ़ते हैं, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, और प्रार्थना किया करो कि यह जाड़े में ना हो। मित्रों, यह महाक्लेश का आरंभ है। तब मार्कुस 13 उसके 19 से 21 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक न तो हुए और न फिर कभी होंगे, और यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता तो कोई प्राणी भी न बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या देखो वहां है, तो प्रतीति न करना। मेरे मित्रों, बड़े कष्ट के दिन आएंगे। और तब हम आगे पढ़ते हैं मार्कुस 13 के 22 और 23 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें, पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से कह दी है। झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता शैतान की शक्ति से चमत्कार दिखाएंगे। मसीह का आगमन जगत में अंधकार से होगा, आकाश में आग और धुएं के खंभे दिखाई देंगे, जो हमें योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 28 से 32 पद में मिलते हैं। मार्कुस 13 उसके 24 से 26 पद में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश ना देगा, और आकाश के तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। मित्रों, ये बादल वर्षा के नहीं, परमेश्वर की महिमा शकीना होंगे, या यीशु की स्वर्ग में उपस्थिति का प्रगटीकरण होगा। मार्कुस 13 उसके 27 पद में हम पढ़ते हैं, उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशा से अपने लोगों को जो चुने हुए हैं इकट्ठे करेगा। यह कलीसिया का उठाया जाना नहीं है, उसके चयनित जन अर्थात चुने हुए जन स्वर्गदूतों द्वारा लाए नहीं जाएंगे, वे उठा लिए जाएंगे, जिसे हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसके 13 पद से 18 पद में पढ़ते हैं। यह एक और दृष्टांत है जो अंजीर के पेड़ का है। मार्कुस 13 उसके 28 और 29 पद में हम पढ़ते हैं, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन बातों को होते हुए देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। अंजीर का पेड़ इसराइल का प्रतीक है। मैं मानता हूं कि कुछ लोग यहां मुझसे सहमत नहीं होंगे, परंतु धर्म शास्त्र से यह स्पष्ट है, इसराइल परमेश्वर की घड़ी है। प्रभु ने कहा कि हमें अंजीर का वृक्ष देखकर पहचानना होगा। मार्कुस 13 उसके 30 पद में हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये बातें ना हो लेंगी तब तक यह लोग जाते न रहेंगे। ये लोग से अभिप्राय है इसराइल जाति या मानव जाति की एक पीढ़ी। इसका अर्थ यह हुआ कि जो पीढ़ी यह देखेगी उसी पीढ़ी के युग में सब पूरा होगा। मेरे विचार में यह अधिक प्रासंगिक है। यहां इसराइल की अटल स्थिति की अपेक्षा घटनाओं के घटने की शीघ्रता पर बल दिया गया है। मार्कुस 13 उसके 31 और 32 पद में हम पढ़ते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के स्वर्गदूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। मित्रों, यह पद कठिन है। यदि यीशु परमेश्वर है तो वह सर्वज्ञानी क्यों नहीं है? इसकी तुलना मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 36 पद से कीजिए। मार्कुस यीशु को लेकर स्वरूप दर्शाता है, इसलिए सेवक नहीं जानता कि स्वामी क्या करेगा। उसने सेवक का रूप धारण किया। वह हमारे स्वरूप होने के लिए सीमाओं से बंध गया था। वह मानव सीमाओं में सर्वज्ञानी नहीं था। मार्था ने भी उस पर रोष प्रकट करके कहा था कि यदि वह आ जाता तो उसका भाई नहीं मरता। अतः उसके सर्वज्ञान की सीमा स्पष्ट है। हम मार्कुस 13 उसके 33 पद में पढ़ते हैं, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। मित्रों, परमेश्वर के जनों का स्वभाव अतः यह हो कि वे प्रार्थना करते रहें जब भविष्यवाणी पूरी हो। मार्कुस 13 उसके 34 से 37 पद में आगे लिखा है, यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम जता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्गे के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते हुए पाए, और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। मित्रों, यह जैतून के पर्वत पर यीशु के वचनों का समापन है। इसमें यीशु के पुनः आगमन और यीशु को लेखा देने के लिए उसके जनों का उत्तरदायित्व तथा प्रार्थना में लगे रहने का निर्देश यहाँ प्रकट है। आपके और मेरे लिए यही निर्देश है। बाट जोहना भय से या फिर उत्सुकता से होता है, परंतु परमेश्वर के जन आशा और महिमामय प्रकटीकरण की बाट जोहते हैं, जो आनंद से पूर्ण अपेक्षा है। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही नई बातों को सीखा है, और विशेष करके इस अध्याय में हमने उन बातों को देखा है कि जगत के अंत के समय क्या क्या घटनाएं घटेंगी, और ये सारी घटनाएं घटेंगी, और इससे हमें पता चलेगा कि जगत के अंत का समय निकट आ गया है। और इसलिए मुझे और आपको और प्रत्येक विश्वासी को सचेत रहने की आवश्यकता है, जागते रहने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर के उस राज में प्रवेश कर सकें और इस कठिन पल का हम सामना कर सकें। आइए हम आज के वचन के आधार पर अपने जीवन को जांचें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि ऐसे कठिन पल हमारे जीवन में आए तो हम उसमें स्थिर रह सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सामर्थी और पवित्र और जीवित वचन के लिए, जिसके द्वारा से आपने हमसे फिर से एक बार बातचीत किया है, और इस बात को आपने हमें बता दिया है कि आप मनुष्य होकर हमारे बीच में आए, और इसलिए आए कि आप हमें मुक्ति दें। इस संसार के अंत के बारे में आपने हमें बता दिया है कि किस प्रकार इसका अंत होगा, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन कठिन पलों में आप अपने लोगों की रक्षा रखवाली करें, हर एक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ और वचन से परिपूर्ण करें, ताकि एक एक का जीवन आप में बलवंत होने पाए और आपको आदर दे सके, आपको महिमा दे सके। हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के जीवन के हर एक कमी घटियों में प्रभु आप उनके सहायक होइए, आप उनकी मदद कीजिए, ताकि एक एक जीवन आपको अपने जीवन में देखने पाए और महिमा देने पाए। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मैंने जीने का पाया, जीवन सजाया सजाया। जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मेरी जिंदगी में थे नफरतों के साए, मेरी जिंदगी में थे नफरतों के साए, अपने हुए थे पराए, प्यार किसी ने दिखाया दिखाया। जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मैंने जीने का पाया, जीवन सजाया सजाया। जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में थे हसरतों के मेले, मेरी जिंदगी में थे हसरतों के मेले, जीते थे फिर भी अकेले, साथ किसी मेरी